Egyptian.
Egyptian.
Hát ezek a bandázat, itt az nem mondok. Group X. Delhi Group. Delhi को परेशान कब बनाएंगे? कितना समय चाहिए? समय चाहिए या ever ready हो? बाबा पूछ रहे हैं दिल्ली ग्रुप से, दिल्ली को परिस्थान कब बनाएंगे, कितना समय चाहिए, समय चाहिए या ever ready हो? किसी ने कहा ever ready है, तो कल दिल्ली में परिस्थान हो जाएगा? किसी ने कहा बाबा चाहे तो, लेकिन निमित्त तो आप हो ना, निमित्त बच्चों को बनाया है, बच्चों को आगे रख करके बाबा बैकबोन रहता है, तो कब परिस्थान बनाएंगे? बनाना तो है ना, बनना ही है, तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली परिस्थान बने और जाए। निमित्त दिल तो दिल्ली वाले हैं ना, चाहे सर्व के सहयोग से हो, होना ही है। फिर भी जो दिल्ली में बैठे हो उन्हों का तो विशेष पाठ है ना, तो इतनी तैयारी कर रहे हैं कि पहले कब्रिस्तान बने फिर कब्रिस्तान बनाएंगे, क्या करेंगे? किसी ने कहा समय बनाएगा, समय नहीं कराएगा, समय कराएगा। किसी ने कहा समय नहीं कराएगा, समय को लाएंगे, क्योंकि अनेक बार ये निमित्त बनने का पाठ बचाया है, अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। तो अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर रहे हो, क्या कह रहे बाबा? श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। जितना जितना शक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन होंगे तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएगी। मनुष्य आत्माओं को वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने वालों की वृत्ति कैसी होनी चाहिए फिर? शक्तिशाली और होनी चाहिए, साधारण नहीं। तो मनुष्य आत्माओं को वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा। परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने वाले की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण नहीं। साधारण वृत्ति या साधारण वाइब्रेशन से परिवर्तन होना मुश्किल है, असंभव है। तो दिल्ली वालों की बड़ी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी समझते हो या समझते हो कि हो जाएगा? नहीं, निमित्त बनना है। ड्रामा में मालूम है, ब्रह्मा को भी मालूम है और था कि नारायण बनना ही है, फिर भी क्या किया? निमित्त बने ना। जगदम्बा को पता था कि लक्ष्मी बनना ही है, फिर भी निमित्त बनकर दिखाया। तो सदा अपनी जिम्मेवारी को स्मृति में रखो, तो जिम्मेवारी क्या करती है? अलर्ट बनाती है। कभी कभी भी कोई कार्य की जिम्मेवारी होती है तो अलर्ट हो जाते हैं, जागृत, अगर जिम्मेवारी है तो सदा अलर्ट रहना पड़े, कभी कभी नहीं, सदा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, अगर आत्मा को बाप द्वारा कोई ना कोई वर्षा दिलाना ही है तो चाहे मुक्ति का दिलाओ चाहे जीवन मुक्ति का दिलाओ, लेकिन वर्षे के अधिकारी तो बनेंगे ना, तो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने। कल बाबा ने कहा था ना, तुम सब कौन हो? अल्लाह अवलदीन के चिराग हो। तो चिराग से जो देखना दिखाना चाहो, जो पाना चाहो वो पा सकते हो। तो घर और राज्य की राह, घर और राज्य को दिखाने वाले हो, जिसको सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले हो। लेकिन वर्षे के अधिकारी तो बनेंगे ना, तो दिल्ली वालों को कितना काम है, तो अलबेले नहीं बनो। यह सभी की जिम्मेवारी है, यह समझते हो, यह तो केवल बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो छोटे हैं,
इसमें छोटे सुभान अल्लाह है, बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह। सभी को सदैव यश शुभ संकल्प इमर्ज हो कि दाता के बच्चे बन, सभी आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बने, कोई वंचित नहीं रहे। जितनी भी आत्मा है सभी को वर्षा मिलना चाहिए। फिर भी ब्रदर्स तो है ना, तो ब्रदर्स होने के कारण रहम तो आएगा ना, चाहे कैसा भी हो, लेकिन बाप का तो है ना। इस संसार की जो भी आत्माएं हैं सभी ब्रदर्स है। कहते हैं सभी हम अपने आप को विश्व नागरिक समझे, बेहद में रहे विश्व नागरिक। विश्व नागरिक होने की हैसियत से सभी विश्व वासुदैव कुटुंबकम है, सारा पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। चाहे कैसा भी हो लेकिन बाप का तो है ना, कैसा भी हो। कल भी बाबा ने कहा था ना, चाहे तुम जानो या ना जानो बाप सबको याद करता है, चाहे जानो या ना जानो। वो केवल ब्राह्मण आत्माओं की बात नहीं है, सभी विश्व की सब आत्माएं चाहे जानो या न जानो। तो जैसे बाप बच्चों को याद करता है वैसे बच्चों को भी बाप को याद करना है। बाप को काम ही क्या है, बोला था ना, बाप को काम ही क्या है,
बच्चों को बहुत काम
है, बाबा से ज्यादा काम है। तो एक दिन अच्छा तो वो बेहद में है, तो कल बोला था नंबर वन मधुबन का सेवाधारी कौन है, ब्रह्मा, और नंबर वन सेवाधारी है। तो उसकी स्थिति बेहद की, वो सेवाधारी बेहद का, उसकी दृष्टि, उसकी देखने की दृष्टि बेहद की, उसके बोल अनहद बोल सुनना सुनाना, उसका उसके संस्कार बेहद के, उसके त्याग बेहद की, उसकी तपस्या बेहद की, उसके संकल्प बेहद के विश्व का कल्याण हो। तो बेहद के सेवाधारियों में बेहद के गुण होने चाहिए। तो तुम सब धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी भी ब्रह्मा समान हो, फॉलो फादर करने वाले हो। चाहे कैसा भी हो लेकिन बाप का तो है ना। आप भी कहेंगे भाई भाई तो है ना, या कहेंगे अज्ञानी भाई ज्ञानी भाई, लौकिक अलौकिक, बीके नॉन बीके, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, सबको कहेंगे ना भाई भाई। तो चलो और कुछ नहीं, जो सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाए वो तो अनुभव कराएंगे ना। विश्व की सभी आत्माओं में मुक्ति की चाहना है, मुमुक्षत्व कहा जाता है उसे भक्ति में, मुमुक्षत्व मोक्ष की कामना है। तो उन्हें सबको मोक्ष धाम पहुंचाना है, मुक्ति धाम को मोक्ष धाम भी कहते हैं। वो आशा तो पूर्ण कराएंगे ना। तो क्या कहा बाबा ने, दिल्ली वालों से मिल रहे और बाबा कह रहे हैं कि दिल्ली को परिस्थान बनाएंगे, कब बनाएंगे, एवर रेडी हो जाएगा। तो बच्चों ने कहा बाबा चाहे तो हो जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा निमित्त आपको बनना है, बच्चों को आगे रख के बाप तो बैकबोन है। फिर कहा कौन करेगा, समय करेगा, समय नहीं कराएगा, समय को लाएंगे। क्यों, क्योंकि अनेक बार के निमित्त बनने का पाठ बजाया है, अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। तो अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर रहे हो, तो परिवर्तन की विधि क्या है, शुभ भावना शुभ कामना। जितना जितना शक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन होंगे तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज होंगे। मनुष्य आत्माओं को वृत्ति से चेंज करना और प्रकृति को वाइब्रेशन से। प्रकृति प्रकंपन बहुत जल्दी कैच करती है, पांचों ही तत्वों को रोज सकाश देने की बहुत आवश्यकता है। प्रकृति चिल्ला रही है बाबा कहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारी बहुत लंबा समय तक सेवा की है, सतयुग से चालू की उसने हमारी सेवा की करना अब तक। तो अभी वो क्रुद्ध है, क्रोधित है, बहुत तंग किया है उसको। तो प्रकृति से वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना, शांति की किरणें देना, पवित्रता की किरणें देना, प्रकंपन देना प्रकृति को, जल को, धरती को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, पांचों ही तत्वों को श्रेष्ठ वाइब्रेशन से प्रकृति को शांत करना। प्रकृति को वाइब्रेशन से और मनुष्य आत्माओं को वृत्ति से परिवर्तन करना, यह क्रांति की आवश्यकता है। परिवर्तन के क्रांति का समय है। तो दिल्ली वालों की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहती है तो व्यक्ति अलर्ट रहता है, जागृत रहता है। तो हमें स्वयं अलर्ट रहना है और दूसरों को भी अलर्ट करना है। वो नाथ संप्रदाय के जो योगी होते थे, वो घर घर में जब जाते थे तो कुछ चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? अलख निरंजन। नाथ संप्रदाय के विशेषतर क्या, उनका क्या उद्देश्य था वो कहने? जहां पर भी जाते थे अलख निरंजन कहते थे। वो जैसे गृहस्थियों को याद दिला रहे हैं। हाँ, भिक्षा मांगने जब जाते थे तो अलख निरंजन कहते थे। अलख निरंजन, निरंजन परमात्मा का टाइटल है, शिव का टाइटल है। निरंजन अर्थात अंजन रहित, शुद्ध, पवित्र, बिना अंजन के। तो वो परमात्मा का टाइटल है। अलख जगाना मतलब जगाना, जागृत करना उस आत्मा को। उनका तो कहने का भाव ये था कि उस आत्मा स्वरूप में टिक जाओ या फिर उस परमात्मा निरंजन को याद करो। तो वो जागृत करते थे, अलख जगाते थे। अलख
क्या?
अलख
क्या है?
अलख, अलख मतलब जगाना,
आवाज,
आवाज, अलख जगाना। तो हमें भी बाबा ने कहा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी जिम्मेवारी, जागृत होना और जागृत करना विश्व की आत्माओं को।
ऐसा थोड़ा से और एक्सप्लेन करें। बाबा कभी कहता है कि आप जिम्मेवार हो, तो कभी वो बोझ हो जाता है जिम्मेवारी का, तो बाबा कहता है अपनी जिम्मेवारी सारी मुझे दे दो।
बाबा ने कहा तुम जिम्मेवार हो, तीन स्टेटमेंट है। कभी मुरली में एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है इस कार्य के तुम जिम्मेवार, तो तुम्हें अलर्ट रहना है, अलबेले नहीं बनना है। परंतु जो बच्चे, सेकंड स्टेटमेंट, पहला तो तुम सभी जिम्मेवार आत्माएं हो, विश्व को परिवर्तन तुमको करना है, ये सब तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। दूसरा वाक्य, परंतु जो बच्चे अपनी जिम्मेवारी बाप को दे देते हैं, उनका जिम्मेवार बाप है। विश्व परिवर्तन के जिम्मेवार तुम हो, महान कार्य के जिम्मेवार तुम हो, परंतु जो बच्चे अपनी जिम्मेवारी बाप को देते थे, अंदर वो समर्पण का भाव है, तो उनका जिम्मेवार फिर बाप हो जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। ऊपर से तो हमें जिम्मेवारी जो भी मिली है उसको निभाना ही है, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, वो अलर्टनेस, वो जागृत अवस्था नहीं आती है। अलबेले रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। पर यदि किसी को टारगेट दिया जाए, जैसे दादी ने टारगेट दिया था सुखधाम के लिए, सुखधाम का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो दादी ने कहा था ये तारीख तक हो जाना चाहिए बस। तो टारगेट मिल गया तो अलर्ट हो गए कि कैसे भी करके बनाना ही है, चाहे रात में जागना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो टारगेट की आवश्यकता होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जाती है कि तुमको ये करना है, तो कैसे भी करके व्यक्ति करता ही है वो। तो जैसे ये उदाहरण है वैसे ही, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत जरूरी है, परंतु आंतरिक एक समर्पण भाव कि ये करना मुझे है, परंतु फिर भी हमने उस भाव बाबा को वो समर्पित कर दिया अंदर से। तो जो बच्चे अपनी जिम्मेवारी बाप को दे देते, उनका रिस्पॉन्सिबल बाप है। बाबा ने यह उदाहरण दिया जब ड्रामा की बात कही, तो ड्रामा में मालूम था ब्रह्मा को भी कि मैं ही नारायण बनूंगा, मम्मा को भी पता था कि मैं ही श्री लक्ष्मी बनूंगी। लक्ष्मी उसमें वैसे सारे वो लक्षण भी थे, या फिर वो वैसे ही लक्ष्मण लक्षण प्रकट होने लगे। ये पता होते हुए भी कभी अलबेलापन, कभी आलस्य, कभी लापरवाही, बेपरवाह नहीं बने। श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो फिर भी करते ही रहे, क्योंकि उनके पुरुषार्थ करने का और एक लक्ष्य भी था, उदाहरण बनना है सबके सामने। अगर वो ही ना करे तो दूसरे कैसे करेंगे? एग्जाम्पल भी बनना था ना, दृष्टांत बनना था, सैंपल बनना था, उदाहरण बनना था। अगर हम देखें कि हमारी जो दादियां है, अगर उसमें से कोई ये सोचे, मतलब उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर कोई कोई बाहर का कुछ खा ले तो कोई प्रभाव पड़ेगा? इतने लंबे समय की तपस्या, परंतु गलत एग्जाम्पल सेट होता है फिर उससे। तो वो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। तो बहुत सारी ऐसी, कल बाबा ने कहा ना, हर एक बात का निर्णय फैसला मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहकर करो। कल की मुरली में वाक्य है एक, हर बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। तो यहां उदाहरण दोनों का है, मम्मा का और बाबा का, कि इन्होंने, इनको पता था परंतु फिर भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। वो जो रुकावट है ना, जो कल मुरली में कहा था, एक है कि होना चाहिए, उसके बीच में एक व्यर्थ संकल्पों के ईंटों की दीवार, कौन सी है वो?
अंत में होगा,
अंत में हो जाएगा, ये है व्यर्थ संकल्प के ईंटों की दीवार। इसको एक दृढ़ संकल्प से हाई जंप देना है। वो कौन सा दृढ़ संकल्प है? मैं करके दिखाऊंगा, क्या करके दिखाऊंगा? मैं अल्लाह वल दीन का चिराग बनकर दिखाऊंगा, बेहद का सेवाधारी बनकर दिखाऊंगा, फॉलो फादर करके दिखाऊंगा। एक है होना चाहिए, एक है मैं करके दिखाऊंगा, और दूसरा एक व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार, वो है अंत में हो जाएगा। ये तो चलता ही है, चलता ही आ रहा है, ये व्यर्थ संकल्प है कि अभी नहीं बाद में करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल से चालू करेंगे। अच्छा पुरुषार्थ एकदम, जो कल कहा ना, सुबह से लेकर रात तक जो तुम्हारी दिनचर्या है, सुबह अमृत वेले ऐसा कोई ग्रुप बनाओ, ऐसे हम शरीक पुरुषार्थियों का ग्रुप बनाओ, एक हफ्ते का प्लानिंग करो, सुबह से लेकर देखो अमृत वेले उठते हो तो संकल्प कौन सा विशेष हो, क्लास में विशेष क्या अटेंशन रखना है, दिनचर्या में क्या लक्ष्य रखना है, शाम को घूमते हो तो मनसा द्वारा कौन से वाइब्रेशंस फैलाने हैं, रात को जब चार्ट लिख, दुमा शाम का योग करते हो तो उसमें क्या विशेष प्रयोग करना है, रात का जो चार्ट लिखते हो उसमें विशेष क्या, कौन सी विशेष चेकिंग करनी है, हर नई चीज उसमें लाओ। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, हर आत्मा को बाप द्वारा कोई ना कोई वर्षा दिलाना ही है। कितना बड़ा काम है कि जितनी संसार में आत्माएं हैं उन सबको परमात्मा संदेश पहुंचाना है। हम परमात्मा संदेश वाहक है, जब तक हर आत्मा का कल्याण नहीं हो जाता, जब तक हर आत्मा को परमात्मा परिचय नहीं मिल जाता, तब तक हम अपना कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ, हम शांति से बैठ नहीं सकते तब तक। अगर हम सोचे, हम अपने जब न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें दिखता है पता नहीं कितनी सेवाएं हो रही है, यहाँ ये सेंटर खुला, वहां वो हुआ, वहां रैली, वहां वो, परंतु अभी भी अनगिनत आत्माएं है जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुना ही नहीं है। आप अगर मुंबई चले जाओ और दादर स्टेशन पे खड़े रहो तो पता चलेगा कि सब भाग रहे हैं। किसी को पूछो तुमने सुना है, बोलेंगे क्या, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है। तो अभी तक असंख्य आत्माएं है संसार में जिन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हम सोच रहे हैं बहुत सेवाएं हो रही है, क्योंकि हम हेडक्वार्टर में यहां बैठते हैं तो देखते कई लोग आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, परंतु ऐसा नहीं है। कहीं ऐसे गांव में चले जाओ जिन्होंने, वहां तो पता ही नहीं उनको कुछ। तो एक है मुख से सेवा, पर यहां बैठकर मनसा से सेवा करना, सभी आत्माओं को परमात्मा संदेश, परमात्मा प्रेम के प्रकंपन यहां से भेजना। हम जो संदेश यहां से मनसा से भेजेंगे, वो संदेश इन अरावली की को, पर्वतों को चीर कर सारे विश्व में फैलेंगे, सातों समुद्रों को के पार तक यहाँ से वाइब्रेशन जो फैलाएंगे वो जा सकते हैं।
यही मैं पूछ रहा था कि बाबा कहते हैं सबको संदेश देना,
पावरफुल वृत्ति बोला,
संदेश केवल मुख से नहीं दिया जाता है,
वृत्ति
मतलब सबको
संदेश आचरण से भी दिया जा सकता है, संदेश मनसा से दिया जाता है, मनसा श्रेष्ठ वाइब्रेशन, मनसा श्रेष्ठ संकल्प, वायुमंडल बनाकर संदेश दिया जा सकता है। कल बाबा ने कहा ना, मधुबन क्या है, सर्वोच्च स्तंभ है, चाहे नजदीक से देखो चाहे दूर से देखो, कहां से भी देखो, ये सबसे बड़ा स्तंभ है, बेहद की सेवा का स्थान है ये। तो जो हम अभी इस समय कहां बैठे हैं, सबसे ऊंचे स्तंभ में, तो यहां से जो वाइब्रेशन देंगे वो प्रकृति में भी जाएंगे, भूमंडल पर गूंजेंगे वो वाइब्रेशंस, इतनी पावर है इन वाइब्रेशंस में। तो संसार की सभी आत्माएं क्या है, ब्रदर्स है, कोई भेदभाव नहीं, ज्ञानी अज्ञानी नहीं, सबके लिए समान, ज्ञानी अज्ञानी भाई ऐसा नहीं कहेंगे। तो चलो, और कुछ नहीं, जो सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाए तो अनुभव कराएंगे ना, सबकी जो आश है, सबकी जो चाहना है वो हमें पूर्ण करनी है, पूर्ण करेंगे तो बहुत दुआएं मिलेंगी उनसे, थक गई है आत्माएं, बहुत थक गई है, दुख अशांति के नजारे। कल कहा ना ग्रुप नंबर दो, संसार में दुख अशांति के नजारे, हाहाकार है, रो रहे आत्माएं, चिल्ला रही है आत्माएं, ऐसा उधर का। तो आशा तो पूर्ण करेंगे ना, आपकी क्या आशा है? मुक्ति में रहना है। आपकी क्या आशा है? मुक्ति में रहना है। मुक्ति में रहेंगे तो बहुत आराम मिलेगा, रहना है मुक्ति में। परंतु एक युग रहकर पीछे आओ, सतयुग के बाद त्रेता में आ जाओ, नहीं मुक्ति में नहीं रहना है, जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, पांडवों को मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, लेने में होशियार है। तो सदैव यह गीत गाते रहते हो ना कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भगवान भी मिला और भाग्य भी मिला। कोई पूछे या सोचे कि मेरा भाग्य क्या है, अज्ञानी लोग तो सोचते हैं ना कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। आप सोचते हो कि मेरा भाग्य क्या है? कभी संकल्प आता है या नहीं आता है? अपने भाग्य पर निश्चय है? जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो भाग्य कहाँ जाएगा? जहां भाग्य विधाता है वहीं भाग्य है। तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं क्या होगा। तो इतनी खुशी है कि कम ज्यादा होती है, अभी कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन कम नहीं हो। फिर दिल्ली को परिस्थान बनाने के लिए विशेष क्या करना चाहिए, किसी ने पूछा बाबा से। तो बाबा कहते हैं विशेष तो माइक तैयार करना चाहिए जिसमें मेहनत कम और सफलता सहज हो, एक द्वारा अनेकों को संदेश मिल जाए और कार्य में भी सहयोगी बने। जितना जितना निमित्त बनते हैं उतना कार्य में भी सहज सहयोगी हो जाते हो। तो अभी यह लक्ष्य रखो कि भिन्न भिन्न वर्ग के ऐसे माइक तैयार करें जो वह स्वयं ही अपने अपने वर्ग के निमित्त बन जाए। तो ऐसे कोई आत्माएं निमित्त बनने वाली तैयार करो। फिर किसी ने पूछा माइक तैयार करने के लिए क्या करना है, तो बाबा ने क्या कहा, उसके लिए एक ही समय पर तीन प्रकार की सेवा चाहिए। बाबा ने कहा ना तीन प्रकार की, तीनों रूप से तीनों प्रकार की सेवा करो। जैसे कोई भी बहुत बहुत होशियार, चाहे योद्धा हो चाहे आतंकवादी हो, कोई बड़े को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, कोई आतंकवादी दुर्दांत अपराधी हो तो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट सरकार क्या करती है उसको पकड़ने के लिए, चारों तरफ से घेराव करती है और बड़े बड़े इनाम रख दिए उसके नाम से, जो इसको पकड़ के देगा उसको इतने लाख का इनाम मिल जाएगा। खुफिया एजेंसी। तो जब भी कोई बहुत होशियार, चाहे योद्धा हो चाहे आतंकवादी हो, बड़े को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, चारों ओर से उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, तब पकड़ा जाता है।
हमारे लिए 1,00,000 रुपया उठते हैं ये रखा था इंदिरा गांधी।
तो जैसे वो आतंकवादी को पकड़ने के लिए इनाम रखते, वैसे तुम्हें माइक तैयार करना है, तो अभी क्या करोगे, वो चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश करते तो तुम क्या लगाओगे चारों तरफ से। तो यह भी एक ही समय पर मनसा में, वाणी में भी, संबंध संपर्क में भी, वायुमंडल में भी, ये चारों ओर का घेराव हो, तभी ये विशेष निमित्त बनने वाली आत्मा समीप आएगी। बाबा का शायद किसी की तरफ ध्यान है, उसकी बुद्धि में है ये है वो, परंतु वो खुद नहीं कहता है कि ये है, वो चाहता है कि ये बच्चे उस तक पहुंचे, वो खुद उसको टच नहीं कराएगा, वो चाहता है कि ये अपना भाग्य बनाए, ये घेराव डाले और वहां तक पहुंचे, ऐसी उसकी प्लानिंग है। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उनको समीप लाते रहो, क्योंकि वाणी से समीप लाने का समय तो कम ही मिलता है। कल भी कहा था बाबा ने, वाणी से किसी को सुधारना या मनसा से भी सुधारना, अब ये समय अटेंशन दिलाने समय गया, अभी शुभ भावना से करो। लेकिन वाइब्रेशन वायुमंडल बनाने की सेवा सदैव होनी चाहिए, चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा उन आत्माओं को पकड़ना चाहिए। ऐसे वाइब्रेशंस दो कि खिंचकर चला है ढूंढता ढूंढता, सिर्फ एक दो नहीं लेकिन संगठित रूप में चाहिए। तो दिल्ली वालों को बहुत काम करना है, अगर दिल्ली में आवाज बुलंद हो जाए तो विश्व में भी बहुत जल्दी हो जाए, दिल्ली में एक बहुत बड़ा माइक निकल जाए तो चारों ओर आपे ही वाइब्रेशंस फैलेगा। तो दिल्ली वाले आप वाइब्रेशन से सेवा करके माइक तैयार करो, और कोई वाइब्रेशंस में नहीं चले जाना, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी के समय कभी कोई व्यर्थ टाइम व्यर्थ एनर्जी नहीं गंवाता। कल बाबा ने कहा व्यर्थ के रावण को जला दो, व्यर्थ देखना व्यर्थ सुनना व्यर्थ संग से भी बहुत समय और शक्ति नष्ट होती है। यह है सच्ची दिवाली। कल कहा था ना इस रावण को जला दो, व्यर्थ के रावण को। तो अभी कोई नया जलवा दिखाओ, कोई नई करामात दिखाओ। अभी जैसे दिल्ली में नंबर वन सेवा का केंद्र खुला तो दिल्ली से माइक निकलेगा, सेवा का स्थान तो दिल्ली से हुआ ना, और दिल्ली ने कई अच्छी अच्छी सेवाओं को प्रैक्टिकल में भी लाया है। समय प्रति समय सेवा में सहयोगी बनते रहो ना। अब इसमें नंबर लो, विदेश वाले भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पहले चैरिटी बिगिन सेट होम होना चाहिए। अच्छा है, लक्ष्य तो सभी का अच्छा है और सेवा भी, सेवा से प्यार भी है। अभी सिर्फ जो बीच बीच में व्यर्थ आ जाता है उसको समाप्त कर समर्थ वाइब्रेशन से समीप लाओ। तो जब तक व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त नहीं होंगे तो ये श्रेष्ठ वायुमंडल नहीं बनेगा। समझा क्या करना है? समझा? देखेंगे कितने समय में करते हैं। जल्दी करना है या समय लगेगा? समय आएगा तब करेंगे। किसी ने कहा हुआ ही पड़ा है, लेकिन कितने टाइम में हुआ पड़े पड़ा है? फिर किसी ने कहा जब गेट खुलेगा, फिर बाबा कहते हैं गेट किसको खोलना है? ब्राह्मण फरिश्ते बनेंगे तो गेट खुलेगा, ब्राह्मण फरिश्ते बनेंगे तो गेट खुलेगा। तो कमाल दिखाएंगे या वहां जाकर अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। चाहे कोई भी निमित्त सेवा मिली हुई हो लेकिन लेकिन बेहद की हो, हद की नहीं। कोई भी निमित्त सेवा मिली हुई हो लेकिन बेहद की हो, हद की नहीं। रोटी बना रहे हो परंतु वृत्ति श्रेष्ठ हो, स्थिति श्रेष्ठ हो। कल कहा ना बाबा ने, हाथ कार्य कर रहे, हाथ चला रहे परंतु मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुणमूर्त होकर सेवा करो तो डबल जमा होगा। कल कहा था गुणमूर्त होकर सेवा करो तो डबल जमा होगा। कार्य करते हुए हाथ चलाते हुए मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। रोटी बना रहे परंतु जो स्वरूप है स्मृति स्वरूप, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो, यह है बाप को फॉलो करना। जैसे ब्रह्मा ने भी रात को जागकर वाइब्रेशंस का मंथन किया, वैसे बच्चों को भी विचार सागर मंथन करना है। तो सेवा भी हो परंतु साथ साथ डबल सेवा, विश्व सेवाधारी अर्थात सिंगल सेवाधारी नहीं, विश्व सेवाधारी अर्थात डबल सेवा। स्थूल सेवा भी कर रहे हैं और साथ से मनसा भी श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। तो ये सेवा बाबा को चाहिए, उसको कहते हैं बेहद की, हद की नहीं। हद पसंद नहीं है बाबा को। तो बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं ना, इतने बिजी होते हो जो टाइम ही नहीं मिलता है। इसके लिए टाइम की भी आवश्यकता नहीं है। निमित्त सेवा करते हुए भी बेहद के सहयोगी बन सकते हो। माताएं बन सकती है कि फुर्सत ही नहीं मिलती बेहद की सेवा करने के लिए। फुर्सत है कि बच्चे ही नहीं सुनते, क्या करें। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी मिली है वो और ही सहज हो जाएगी। जितनी हमारी स्थिति ऊंची है उतना सब कुछ सहज होते जाएगा। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, जितना जो हल्का होता है वो ऊंचा, अगर नीचे आते हो तो समझना चाहिए कि बोझ है। फरिश्ता अर्थात ऊंचा। तो समझा क्या करना है? समझ में आ गया सबको? बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी समझ नहीं आया। सदा अपने को बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, हर संकल्प में हर सेकंड में सेवाधारी बनाओ। बेहद के सेवाधारी, दो चार घंटे की तपस्या नहीं, तपस्वी स्वरूप और तपस्वी मूर्त। कल क्या कहा बाबा ने, इमेज ऑफ तपस्या एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ तपस्या, इमेज ऑफ तपस्या, तपस्वी मूर्त। ये बाबा के दो फेवरेट शब्द है, मूर्त और स्वरूप। हर चीज को बाबा मूर्त और स्वरूप लगाते, प्रेम स्वरूप प्रेम मूर्त, शांति स्वरूप मूर्त और स्वरूप, सदा और डबल, ये दो और बाबा के फेवरेट शब्द है। कभी कभी नहीं, सदा, सिंगल नहीं, डबल। सिंगल डबल डबल सदा मूर्त और स्वरूप। तो क्या कह रहे बाबा, बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, एक दो घंटे के सेवाधारी नहीं, चार घंटे के सेवाधारी नहीं, आठ घंटे के सेवाधारी नहीं। जो आठ घंटे की सेवा करते हैं वो सर्वेंट्स कहा जाता है हमें, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, आठ घंटा ड्यूटी किया चले। तो यहां भी ऐसे नहीं, आठ घंटा ड्यूटी हुई और मैं तो चला। बेहद सेवाधारी अर्थात 24 आवर्स ऑन कॉल, कभी भी आ सकता है कोई भी। क्यों आपका नहीं है? घर में कोई माता होती है तो वो कहती है कि 9 से 6 बजे तक बस मैं ड्यूटी करूंगी, रात में अगर कोई मेहमान आ जाए, मेरी ड्यूटी तो हो गई अभी मैं नहीं करूंगी, ऐसे करती है। बच्चा अगर रात में बीमार पड़ गया तो वो कहती है कि मेरी ड्यूटी तो 6 बजे तक थी घर संभालने की, अभी मैं नहीं देखूंगी, अभी वो देखेगा। पर ऐसे भी होगा, अभी कहते भी होगी कोई कोई।
मूर्त और स्वरूप
मूर्त और स्वरूप, स्वरूप मतलब उसका साक्षात स्वरूप बन जाना। जैसे एक है शांति, एक स्थिति है, जो स्वरूप है वो जरूरी नहीं है, उसको शायद बोलते भी नहीं आएगा, वो उसका स्वरूप है, मूर्तिमंत स्वरूप है। जैसे मम्मा जो है वो गंभीरता का स्वरूप है, उसका हंसना, उसका बोलना, उसका चलना, वो स्वरूप है एक साक्षात। वो जैसे देवी, जैसे प्रेम के लिए कहा जाता है ना, जैसे क्राइस्ट मतलब ये भक्तों के लिए कहा जाता है, जब प्रेम को संकल्प आया कि मैं क्या करूं, तो प्रेम ने अवतार लिया, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए दिखाते प्रेमावतार, जैसे मूर्तिमंत प्रेम है, वो स्वयं प्रेम है। तो वो जो होता है वो है स्वरूप। इमेज और स्वरूप लगभग समान ही शब्द है, शब्दों में थोड़ा अंतर है। तपस्या का तपस्वी मूर्त, जिसको इमेज कहते हैं, मूर्त मूर्ति है, जैसे ये स्वरूप से थोड़ा नीचे है एक रीति से अगर देखा जाए तो। स्वरूप मतलब वो संपूर्ण साक्षात वही गंभीरता की मूर्त, ममता की मूर्त। जैसे ममता को लगा कि क्या करूं, तो ममता ने रूप धारण किया, एक साकार रूप।
स्वरूप है चेतन, मूर्ति है जड़।
मूर्ति मूर्त हो जाना मतलब जैसे जस्ट उसके समान, उसके स्वरूप उसके समान लगभग। सूरत तो सूरत शब्दों, बाबा शब्दों से ही तो खेलते हैं। तो सेवाधारी भी कैसे, हर संकल्प में हर सेकंड में सेवाधारी हो, इसको कहा जाता है बेहद के सेवाधारी। ऐसे नहीं चार घंटा तो सेवा कर ली ना, गिनती नहीं है, नहीं, सदा सेवाधारी। मम्मा के लिए कहते हैं कि उसके सामने किसी को भी कभी भी कभी भी कोई भी मिल सकता है, कोई टाइम नहीं है। मतलब मम्मा किसी को टाइम देकर कभी नहीं मिलती थी, जिसको भी जब भी मिलना है वो कभी भी आकर किसी भी समय मिल सकता है, ऐसे उसने बनाया था। अभी कम दे चलो होगी नहीं, सदा सेवाधारी। छोटे छोटे बच्चे भी सेवा करेंगे ना, बाबा ने बच्चों को देखा होगा बैठे हुए, तो छोटे छोटे बच्चे भी सेवा करेंगे ना। अच्छा, तो ये पहला ग्रुप था दिल्ली का, वृत्ति से मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना है, वाइब्रेशन से प्रकृति को परिवर्तन करना है, सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान देना है, संदेश देना है, रहम भाव रखना है, अच्छा ज्ञानी अज्ञानी ये भाव नहीं, तो सबको पहुंचाना है मुक्ति धाम में। और कोई एक ऐसा माइक तैयार करो उसके तरफ, उसके लिए चारों तरफ से घेरा हो, मनसा वाचा संबंध संपर्क से, वाइब्रेशन से, वायुमंडल से, हर तरह से घेराव डालो। चैरिटी बिगिंस एट होम, और लास्ट में बाबा ने कहा बेहद के सेवाधारी। अच्छा,
मां बन जा रही है।